अडल्ट्री पर कोर्ट के फैसले का औरतों के लिए मतलब, ये आर्टिकल लिखा है गीता यादव ने। वो लिखती हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ये डर गैर वाजिब है कि इससे समाज में व्यभिचार यानी सेक्सुअल करप्शन बढ़ जाएगा और महिलाएं अब खुलकर एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर्स बनाने लगेंगी, क्योंकि पार्टनर्स की गिरफ्तारी का डर अब खत्म हो गया है। वैवाहिक संबंधों में व्यभिचार महिलाएं भी करती हैं, लेकिन ऐसा करने की ज़्यादा सुविधा पुरुषों को होती है क्योंकि वे आर्थिक तौर पर अक्सर ज़्यादा सक्षम होते हैं और घर से बाहर भी वही ज़्यादा होते हैं। विवाहेतर संबंध पुरुषों के लिए लांछन नहीं होते, बल्कि कई बार तो पुरुष इसे ट्रॉफी की तरह दिखाता है। महिलाओं के लिए ऐसा हर संबंध लांछन है और समाज की नज़रों में उन्हें बाजारू और उल्टा बनाता है। वास्तविकता में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पुरुषों को मुकदमेबाजी और सजा से बचाने के लिए आया है। महिलाएं इस कानून में न तो पक्ष थीं और न ही विपक्ष, न तो वे ये मुकदमा कर पाती थीं और न ही वो अभियुक्त होती थीं। वो तो सामान थीं। उन्हें केस प्रॉपर्टी भी माना जा सकता है जिसका इस्तेमाल सबूत और गवाही के तौर पर होता था। इस फैसले को महिलाओं के पक्ष में तब माना जाता जब व्यभिचार करने वाले पतियों के खिलाफ मुकदमा करने और उन्हें सजा दिलाने का विधान बनता। व्यभिचारी पति पहले भी छुट्टा घूमते थे और इस फैसले से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। अडल्ट्री यानी किसी पुरुष का किसी विवाहिता स्त्री से उसके पति की सहमति के बगैर बनाया गया स्वैच्छिक यौन संबंध, ये विकसित देशों में अपराध नहीं है। पूरा यूरोप ऐसे किसी भी कानून से मुक्त हो चुका है। अमेरिका में सहमति से वयस्कों के बीच बनने वाला कोई भी यौन संबंध अपराध नहीं है, इसलिए अडल्ट्री के तमाम कानून वहाँ व्यवहारिक स्तर पर निरस्त हो गए हैं। ऐसे विवाहेतर संबंधों को तलाक का आधार तो माना जाता है, लेकिन इन संबंधों के लिए किसी दंड या कैद का प्रावधान नहीं है। लेकिन भारत में 27 सितंबर 2018 तक ऐसे संबंध अपराध माने गए और इसके लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान था। लगभग 150 साल तक भारत में विवाह संबंधों पर ये कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 लागू रही। इस कानून की मुख्य बातों को जानते हैं। पति की सहमति से अगर पत्नी किसी और पुरुष से संबंध बनाए तो वो अपराध नहीं है। पति की असहमति से बनने वाले यौन संबंध को ही अपराध माना गया। दूसरा, अगर पति ने विवाह से बाहर किसी विवाहिता महिला से यौन संबंध बना लिए तो इसे तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस महिला का पति मुकदमा ना कर दे, यानी पत्नी अपने पति पर किसी भी स्थिति में व्यभिचार का मुकदमा नहीं कर सकती। अडल्ट्री का मुकदमा हमेशा पति ही कर सकता है। तीसरा, ऐसे मामलों में दोषी हमेशा बाहरी पुरुष होगा, पति और पत्नी कभी दोषी नहीं होंगे। विवाहिता स्त्री से यौन संबंध को ही व्यभिचार माना जाएगा। अगर स्त्री अविवाहिता या विधवा है तो इसे व्यभिचार नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे विवाहितर यौन संबंध अपराध के दायरे से बाहर हो गए हैं। अदालत में याचिकाकर्ता ने तर्क ये दिया था कि अडल्ट्री का कानून सिर्फ पुरुषों के खिलाफ काम करता था, जबकि इस कृत्य में हिस्सेदार स्त्री भी होती है। इसे समानता के अधिकारों के खिलाफ बताकर दलीलें दी गई। अडल्ट्री के कानून के पीछे मूल भावना परिवार संस्था को बचाने की थी। भारत में परिवार संस्था के मूल में विवाह है, जिसे पवित्र माना गया है। हिंदू विवाह परंपरा में संबंध विच्छेद या तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। शादी को जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। आज़ादी के बाद जब हिंदू विवाह कानून में संशोधन हुआ तब पहली बार तलाक की व्यवस्था उसमें जोड़ी गई। विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चा पैदा करना है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होगा कि बच्चा विवाह संबंध के अंदर से पैदा हुआ है? इसके लिए कई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि लड़की की शादी रजस्वला यानी उसके पीरियड शुरू होने से पहले करना, उसे घर के अंदर ही रखना वगैरह वगैरह। अडल्ट्री को अपराध बनाना वो कानूनी व्यवस्था थी जिससे ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कोई बाहरी पुरुष परिवार की रक्त परंपरा को दूषित न करे। इसलिए अडल्ट्री का अपराधी बाहरी पुरुष है, यानी शुद्धता की चिंता कोख यानी गर्भ के मामले में है। दूषित औरत हो रही है, दूषित पुरुष कर रहा है, इसलिए दोषी पुरुष है, औरत नहीं। अडल्ट्री के कानून का वैचारिक आधार यही सोच थी। जिस याचिका में इस कानून को चुनौती दी गई उसमें तर्क यही था कि अगर यह अपराध है तो इस अपराध को औरत और मर्द दोनों करते हैं, फिर सजा सिर्फ मर्द को क्यों? कोर्ट ने दोनों को दोषी मानने की जगह इस अपराध को ही अपराध मानने से मना कर दिया। अब औरत और मर्द दोनों पर ही ये कानून लागू नहीं होगा। सवाल उठता है कि आधी आबादी यानी औरतों के नजरिए से ये फैसला कैसे देखा जाए। कानून में ये बदलाव पहली नजर में औरतों के हक में नजर आ रहा है। फैसले में इस विचार को खारिज किया गया है कि विवाहिता औरतें पति की जायदाद होती हैं और उसे दूषित करने वाले को दंड दिया जाए। विवाह संबंध को दूषित होने से रोकने का दायित्व अब तक सिर्फ औरतों पर था और ऐसा करने वाले औरत के प्रेमी को दंडित किया जाता था। अब दंड का प्रावधान हट गया है और विवाह संबंध या उसकी तथाकथित पवित्रता को बचाने का नैतिक दायित्व पति और पत्नी दोनों का मान लिया गया है। पति अगर शादी से बाहर संबंध बनाकर स्वच्छंद घूम सकता है तो पत्नी भी कम से कम कानूनी तौर पर ऐसा कर सकती है और इसकी सजा उसके प्रेमी को नहीं भुगतनी होगी। ये पति और पत्नी दोनों को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। शादी से बाहर बनाए गए संबंध को नए कानून में भी तलाक का आधार माना गया है। भारत में तलाक के ज्यादातर केस पुरुष दाखिल करते हैं। भारत में विवाह तोड़ना औरतों की प्राथमिकता कभी नहीं है। इसकी बड़ी वजह हालांकि आर्थिक है, लेकिन इसका एक कारण सामाजिक धारणाएं भी हैं। परित्यक्ता होना स्त्री के लिए लांछन है, पुरुष के लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं है। भारत में विवाह औरतों की वजह से टिके रहते हैं, इसलिए ये धारणा गलत है कि कानून के हट जाने से औरतें खुलकर विवाहेतर संबंधों में लिप्त होने लगेंगी। भारत में चूंकि पुरुष ही घर से बाहर ज्यादा निकलते हैं और आर्थिक स्रोत भी उनके पास ही ज्यादा होते हैं, इसलिए विवाहेतर संबंध बनाने के ज्यादा मौके उनके पास होते हैं। मौजूदा फैसला विवाहेतर यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को दंडित करने की बात नहीं करता। इस मायने में ये फैसला समानता के अधिकार कानून की एक रैखिक या सीमित व्याख्या करता है। समानता का अधिकार हर किसी को समान नजरिए से देखने और उससे समान व्यवहार करने का सिद्धांत नहीं है। मिसाल के तौर पर औरतों को मिलने वाले विशेषाधिकार इसलिए नहीं खारिज कर दिए जा सकते कि औरत मर्द सभी समान हैं, या कि समाज के वंचित तबकों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि हर नागरिक समान है। समानता का अधिकार वंचित समूहों के लिए पक्षधर हो सकता है और होना चाहिए। विवाह संबंधों में ये पक्षधरता महिलाओं के पक्ष में होनी चाहिए, क्योंकि वे कमजोर स्थिति के साथ विवाह में होती हैं। मौजूदा फैसला महिलाओं को किसी भी तरह का विशेष संरक्षण नहीं देता। मौजूदा फैसला दरअसल पुरुषों को मुकदमेबाजी और दंड से बचाने के लिए है। महिलाओं को सिर्फ ये सैद्धांतिक जीत मिली है कि कानून उन्हें पुरुषों की वस्तु या जायदाद की तरह नहीं देखेगा।